श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 16 दिनांक 16 मई 2015 स्पीकर इज ग्रेस वन वाली प्रभु
श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोआविष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति मे सदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्तवत्सल भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनों के नाथ दीनों के बंधु कृपा के सिंधु कृपा के सागर दया के निधि दया के मूर्ति परब्रह्म अखिल रसामृत मूर्ति रसराज रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी इनके परम अनुकंपा एवं महिति कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के आश्रय ग्रहण कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नगमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए जैन महान व्यक्तित्व के माध्यम से भगवान का जो असीम कृपा बड़े सुलभ हमें प्राप्त हो रहा है वह कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए आप सब से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दास पर कृपा रखें कि इस सेवा के माध्यम से गुरु प्रभुपाद जी और वैष्णव को मैं प्रसन्न कर पाऊँ। तो इसी के साथ हम आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान का ये जो दिव्य लीला है, प्रभु जी बता रहे थे, गुड़ाकेश प्रभु बड़े सुंदर बता रहे थे कि ये चीरहरण का जो लीला है ये बड़ा पवित्र लीला है, ये भगवान का ये प्रेम लीला है, कोई काम लीला नहीं है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्मचा में दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है और उनके सारे कर्म दिव्य हैं। यह लीला को तो बहुत पवित्र है, परम पवित्र। यह प्रसंग जो है इतना पवित्र है क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र हैं और जिनके साथ लीला कर रहे हैं वे भी पवित्र हैं, और यह आदान प्रदान जो है यह भी परम पवित्र है। तो ये भगवान के इस जन्म और कर्म को इस पवित्र भाव से समझकर, पवित्र भाव से इसे ग्रहण करना चाहिए। ये वृंदावन धाम इतना पावन पवित्र है और यहाँ के वासी भी इतना पवित्र है, उन्नत है, इन्हें हम समझ नहीं पाएंगे या समझना बहुत मुश्किल है, या समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ कुछ पता लगेगा। एक संत कह रहा था कि ब्रज में वास करने के लिए या एक दो दिन के लिए आने के लिए जाने के लिए, सुना कि ब्रज बहुत अच्छे होते हैं, ब्रज के वासी बहुत सुंदर होते हैं, उनका भगवान से अति प्रेम होता है। तो एक महान व्यक्तित्व जो अपने काल में सरकार के, भारत सरकार के एक अच्छा उपाधि में थे, उनका उम्र हो चुका था, वे अपने कार्य से रिटायर हो चुके थे, चलो ब्रज जाते हैं। संतों ने कहा, संतों से सुना कि बहुत पवित्र धाम है, यहाँ के लोग अच्छे होते हैं। तो ब्रज वास करने गए थे दो तीन दिन के लिए, तो वहाँ पे ब्रजवासियों के बीच उनका रहना था। तो एक माता ब्रजवासी, वे भगवान को भोग लगाने के लिए चूल्हे में रोटी इस प्रकार से सेंक रही थी, पकाने का प्रयास कर रही थी। उतने में बच्ची उनकी छोटी सी रोने लगी। बच्ची रोने लगे तो उन्हें शांत किया, फिर से रोटी के और जा रहे थे, फिर से बच्ची रोने लगे, तो माता ने वहां से जोर से चिल्लाया, हे सौतन मेरी। आप जानते हैं सौत किसे कहते हैं, सौतन किसे कहते हैं, सौतन किसे कहते हैं? एक पत्नी है और पत्नी के कंपटीशन में और कोई होता है तो उसे सौतन कहते हैं। हे सौतन मेरी, चुप क्यों नहीं होती हो? तो ये जो ऑफिसर था वो डर गया, ये तो सुना यहाँ के ब्रजवासी बहुत सुंदर है, अच्छे हैं, इनका ये तो गालियों के सिवा और कुछ बात नहीं करते। वो चुपचाप पैक करके ब्रज से बाहर निकला। प्रभुपाद जी इसलिए कहा, तीन दिन से ज़्यादा मत रहो ब्रज में। पहला दिन सब अच्छा लगे, अरे वाह क्या ब्रज है, कितना अच्छा मौसम है, सब राधा श्याम सुंदर का अच्छा दर्शन हो रहा है। दूसरे दिन चलो खींच लेते हैं, पर तीसरा दिन लगेगा, अरे ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, भला इससे पहले कि अपराध करें निकल जाओ। तो वो गया संत के पास, बोला आप इतना कह रहे थे कि ये ब्रज कैसा है वैसा है, पर मैंने तो देखा ये तो गालियां देकर बात कर रहे हैं, सौत करके अपनी बिटिया को, अपने बच्ची को गाली दे रही है। संत ने कहा, कान पकड़ा, बोला ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ब्रजवासियों के प्रति अपराध हो जाएगा। क्या कह रहे हो, अपराध कैसा, ये तो गाली है। तब कहा, आप समझोगे नहीं इस ब्रजवासियों को, आप इन ब्रजवासियों को समझोगे नहीं, ये माता और ये बच्ची, माँ का, ये माता का चेतना भी कितना उन्नत है। वे अपने आप को कृष्ण का दासी समझ रही है, और इतना ही नहीं, वो अपने बच्ची को अपनी बच्ची नहीं, वे अपने बच्ची को भी कृष्ण का ही दासी, वे यह सोच समझ रही है कि मैं तो कृष्ण का एक पत्नी हूँ, साथ ही साथ मेरी बेटी नहीं, वो भी कृष्ण का ही पत्नी है, पर अब मैं यहाँ पे रोटी सेकने जा रही हूँ, मेरी सौत है वो, मुझे कृष्ण सेवा करने नहीं दे रही है। तब वो गवर्नर जो भी जो ऊंचे पद में थे सरकार के अफसर, वो समझ गया ये साधारण ब्रजवासी गाली तो दे रहे हैं, पर इनके गाली के पीछे बहुत गहरा प्रेम का एक आदान प्रदान है। तो ये ब्रज बहुत सुंदर धाम है, इस धाम पवित्र धाम है, इसे समझने के लिए हमें पवित्र भक्तों से प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों का आश्रय लेकर इसे समझने का प्रयास करना होगा। तो भगवान का यह जो लीला है बड़ा पावन पवित्र है, और यहाँ पे वर्णन आता है यह चीर हरण लीला। शरद ऋतु में भगवान ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शरद ऋतु में भगवान ने वेणु का नाद किए। उस वेणु नाद में जिन गोपियों का वर्णन आया, जितने भी गोपियों का वर्णन आया, वे सब विवाहित गोपियां हैं। वेणुनाद या वेणु गीत में जितने गोपियों का वर्णन आया, ये सब बड़े गोपियां थी जो कृष्ण जो विवाहित थे और कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके थे, और उन्हें पता है कि कृष्ण हमारे पति हैं। कृष्ण के वेणुनाद से उनके अंदर वो तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। वो तीव्रता जो उन गोपियों में है, उससे सुंदर हृदय के से वेणु का गुण महिमा और पूरे ब्रज का महिमा और ब्रज में रहने वाले हर पशु पक्षी, यहाँ तक कि गोवर्धन और यहाँ तक कि बादल का भी गुणगान करने लगे। सब लोग अच्छे हैं, केवल हम बुरे हैं। सब भगवान के सेवा में लगे, केवल हम नहीं। तो ये जो गोपियों का प्रेम है इस वेणु गीत में देखा गया, उनकी जो तीव्रता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, ये छोटे गोपियों के अंदर भी आ गए जो अविवाहित थे। तो इसलिए यहाँ पे इस 22वें अध्याय में वे सुनते हैं कि वेणु ने बहुत तपस्या किया, ये वेणु ने बहुत तपस्या किया। तो ये गोपियाँ सोचने लगी, ये वेणु ने कृष्ण का अदर अमृत पान करने के लिए खूब तपस्या की है, तो हम भी तपस्या करेंगे। तो 22वें अध्याय में कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण नाम दिया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अब शरद ऋतु के बाद जो ऋतु है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं, और उस हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए अविवाहित गोपियों का यहाँ पे लीला वर्णन करते हैं। श्री सुकवाच हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरूर हविष्यम बुंजाना कात्यान्य अर्चन व्रतम। हेमंत मास, हेमंत ऋतु के जो प्रथम मास है उसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं। कार्तिक महीने के बाद आने वाला जो महीना है, भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अहम्। उस कार्तिक महीने में गोपियों ने कात्यानी का व्रत किया था। ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां अविवाहित गोपियां हैं, और ये अविवाहित गोपियां इतना तीव्र तप करते हैं, और एक महीने तक उन्होंने व्रत किया था। कात्यानी व्रत करते हुए क्या क्या किया, इन सब का हमने वर्णन सुने हैं, और इनकी जो तीव्र प्रार्थना है कात्यानी देवी से, इसका वर्णन हम थोड़ा देखेंगे इस श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज द्वारा। यहाँ पे वर्णन आता है, कहते हैं कि ये गोपियाँ जो है कात्यानी देवी से कहने ली, कात्यानी महामाये महायोगी नादीश्वरी। कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए वे अपने प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं कि हे कात्यायनी देवी, आप महामाया माया हो, आप महायोगी हो, आप और आप आदिश्वरी हो। इतना गुणगान करके वो कहते हैं, दृढ़ प्रार्थना उनका यह है, उनका संकल्प भी यह है, नंद गोप सुतम देवी पति मैं कुरु ते नमः। ये नंद के जो गोप है, नंद महाराज के जो पुत्र है सुतम, नंद गोप सुतम, हे देवी पति मैं कुरु, उन्हें मेरा पति बना दो। आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे। कात्यायनी देवी से डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप उनको मेरा पति बना दो। तो अगर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको थोड़ा कहते हैं, ठीक है, कात्यायनी देवी कहते हैं, अरे 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 प्रार्थना करो, पर थोड़ा इसमें ऐसे थोड़ी जबरदस्ती किया जाता है कि नंद ब्रज को, नंद के जो नंद राजा के जो पुत्र है उसको मेरा पति बना दो, जबरदस्ती ऐसे कैसे प्रार्थना है। आप ऐसा कहो कि नंद के जो पुत्र है कृष्ण, उनके माता पिता और हमारे माता पिता के मन को ऐसा बना दो कि कृष्ण और हमारा विवाह हो जाए, ऐसा बोलो। तो बोलते नहीं नहीं, विवाह इस प्रकार से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कृष्ण अभी तक उनका जनेऊ धारण या ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ। इस प्रकार से अगर हम माता पिताओं के मन को मनाने जाएंगे तो यह विवाह नहीं होगा, वैध रूप से यह नहीं होगा। अच्छा, तो क्या करना है? तो कहते हैं कि आप महामाया हो, महायोगिन हो और आप आदिश्वरी हो, आपके पास सारा शक्ति है। देखो हमारे हृदय में कृष्ण को पाने का तीव्र इच्छा है पति के रूप में, इस इच्छा को अभी इसी वक्त पूरा करना है आपको। आप कृपा करके कृष्ण को हमारे पति बना दो। पर पति कैसे बनाएं? तो कहते हैं कि आप गंधर्व विवाह के माध्यम से, गंधर्व विवाह का अर्थ होता है कि पति यानी कि स्त्री और लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को चुन लेते हैं। आजकल ये फैशन हो गया गंधर्व विवाह, लड़के लड़कियां स्वीकार कर लेते हैं, इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है, उनको बाद में पता लगता है, ऐसा भी होता है, बाद में पता लग जाते हैं, अरे फिर बाद में वो पछताते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो एक बार भक्ति रसामृत महाराज क्लास दे रहे थे यहाँ पे, बोले थे कि अरे अरे हम अपने बच्चे को इतना लाड प्यार करके बड़ा किया पर वे हमें छोड़कर किसी और को चुन लिया। तब महाराज जी बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया कि देखिए ये जो है संबंध की बात है, ये संबंध जो है इससे सुख मिलता है। जैसे आपने अपने बच्चे को प्रेम दिया, इससे वात्सल्य रस कहते हैं, उससे जो सुख मिला आपने लिया, उन्होंने भी लिया, पर आगे जाके उनको एक और रस मिला, उसे कहते हैं माधुर्य रस। ये माधुर्य रस जो है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में वो थोड़ा ऊंचा होता है, वो रस बाकी साक्य रस और वात्सल्य रस को काट देता है। इसलिए आप चिंता मत करो, भगवान का भक्ति करो, ये वात्सल्य रस कट गया, अब माधुर्य रस को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, आप चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो है माधुर्य रस की बात है, और इसमें भी कृष्ण जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज जी खास करके श्रीमद् भागवत में पारिक्या रस को बहुत ऊंचे, ये जो ऊंचा रस है उसे स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो बोलते हैं कि हमको गंधर्व विवाह करना है, यहाँ पे माता पिता का कोई अथॉरिटी नहीं होगा, हम आपस में ये कर लेंगे। यह विवाह जो था, सात प्रकार का विवाह है, उनमें से गंधर्व, सात प्रकार का विवाह है ना, आठ प्रकार का है, तो आठ प्रकार का विवाह है, उनमें से एक ये भी है गंधर्व विवाह। इसमें तो इस प्रकार का विवाह हमें करना है, आप कृपा करके शीघ्र अति शीघ्र इसे आप कर दीजिए। तो इस प्रकार का तीव्र प्रार्थना है, और इनके इस तीव्र प्रार्थना पूरे एक मास तक चलता रहा, एक मास तक। और कार्तिक के बाद जो आने वाला मास है मार्चिस मास, उसमें ठंड बढ़ जाती है और वृंदावन में बहुत ठंड हो जाता है। और एक दूसरे को वो बुलाते थे सुबह प्रातः, हम क्योंकि कहते कि समय हो गया, उठो उठो, चलो ए सखी, चलो आओ आओ, चलो एक एक को वो बुलाकर वह जाते थे और यमुना के तट में जाकर पवित्र भाव से स्नान इत्यादि कर कर वे इस प्रकार का व्रत का पालन कर रहे हैं। करते करते एक मास पूरा हो गया, इसका वर्णन आता है। एक दिन की बात है, वहाँ पे साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। वर्णन आता है, नंद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षेपे पूर्ववत वासां श्री कृष्ण ज्ञानतयो विजुजुह सलील मुदा। कहते हैं कि एक दिन की बात है, और कहते हैं कि वो दिन पूर्णिमा का, यानी कि एक पूरा महीना बीत गया और इतने पूरे व्रत पालन उन्होंने जो किया, उस व्रत को अब संपन्न करना था। और ये जितने भी अविवाहित गोपियां थी, सारे गोपियों को बुलाया, उन गोपियों में श्रीमती राधा रानी को भी बुलाया, ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और सब उस दिन बड़े पवित्र भाव से नदी में स्नान किए, और स्नान करते करते क्या हुआ, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये कृष्ण आ गए और धीरे से कृष्ण आकर कृष्ण के यश गा रहे थे और क्रीड़ा कर रहे थे, और वे नदी में स्नान कर रहे थे, और इतने में योगेश्वर कृष्ण जो है वहां पर आ गया और सारे गोपियों के वस्त्र को वो ले लिया। ये जो है यहाँ पे कृष्ण जब गोपियों से वस्त्र चुराते हैं, और गोपियों ने चिल्लाया और वो कहने लगा, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे वस्त्र हैं, पता नहीं ये किसका वस्त्र है। तब गोपियों को पता लग गया कोई हमारे बीच में आ गया, तो बोला यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोला ये कदम का जो वृक्ष है बहुत दूर से सुंदर लग रहा था, मैंने देखा इस कदम के वृक्ष में रंग बिरंगे फल और फूल लगे हैं। तो बोला अच्छा, पर मैं सामने आके देखा तो ये फल फूल नहीं है, ये तो रंग बिरंगे कपड़े हैं। तो सारे गोपियां बोले, किसने ये कपड़े यहाँ पे रखे और ये किसका कपड़ा है। गोपियों ने कहा, ये हमारे कपड़े हैं, ये कपड़े आपने वहां पे रखा, चोर हो तुम। तो नंद महाराज ने कहा, मैं चोर कैसा हो सकता हूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। और इसका प्रमाण, तो बोला प्रमाण मेरे साथ जो बच्चे हैं, उनके साथ और गोप थे, वो कहेंगे, प्रमाण देंगे। हम बहुत सारे उनके गोप मित्र थे, सुदामा और सारे सखाएं थे, श्रीदामा, किंकनी नाम का भी एक सखा था, किंकनी नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लेते हैं, वो सखा भी था। ये सब कहेंगे, ये नाम इसलिए याद आया क्योंकि हमारे इस्कॉन के एक गुरु श्री भक्ति राघव महाराज, उनके एक शिष्य कुछ दिन पहले आए थे, उनका नाम किंकनी था। तो मैंने पूछा, ये नाम किंकनी इसका अर्थ क्या होता है, बोला किंकनी कृष्ण का एक सखा है। तब जाके ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये तात्पर्य में मिला, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो किन किनी दास थे, किन किनी प्रभु आए थे अपने आंख का ट्रीटमेंट के लिए? हो सका भी था, पर जैसे ही कृष्ण ने पूछा ये वस्त्र किसका है, तो सारे बच्चे हंसने लगे। तो इनके हंसी सुनकर ये गोपियां बोले अरे ये कैसे? तो बोले चोर कहीं के आपने हमारे कपड़ा चुराया। बोला मैं चोर नहीं, झूठ कहते हो। बोलता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसका प्रमाण ये बच्चे हैं। तो इस प्रकार से सारे लड़के हंस रहे हैं। ये जो लीला है, इस लीला को बड़े बड़े संत जो कि जिनका चित्त जो है कभी संसार में लगता नहीं है, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जैसे संत हैं जिनका मन कभी हमेशा आत्मा के, परमात्मा के, भगवान भक्ति में स्थिर रहता है, ऐसे संत गुणगान कर रहे हैं। इसमें कोई अपवित्रता देख नहीं रहे हैं, तो ये इसका गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे एक संत ब्रज के, वो इस भगवान के इस लीला के ऊपर एक प्रसिद्ध भजन लिखे और वो कहने लगे ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में एक चोर निकल गया, ब्रज में एक चोर आ गया और ब्रज में प्रसिद्ध हो गया। वो नवनीत को चोरी करने लगे। नवनीत का अर्थ होता है दूध को, ताजा दूध से दही और दही से नया जो मंथन करके मिलता है वो नवनीत मक्खन। मक्खन को चोरी करने लग गया और बड़ा हो गया तो क्या करने लग गया? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकुल चोरम। बड़ा हो गया तो गोपियों के जो वस्त्र है उसे भी चुराने लग गया, चुराया था। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर को मेरा प्रणाम है। अरे चोर को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? चोरों में भी अग्र है, वो चोरों का सरदार है, उसको मेरा प्रणाम, उसको मेरा प्रणाम संत कह रहा है। जो अधर्मी हो तो संत उनको कृपा बरसाते हैं, पर ये कहते हैं कि ऐसे चोर को मेरा प्रणाम। चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उसको मेरा प्रणाम। तो ये जो लीला है ये दिव्य है, इसलिए तो संत लोग इसका गान कर रहे हैं और इसमें आनंद ले रहे हैं, और जो इसका गाते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, तो भगवान का ये चोरी करना जो है ये भी दिव्य है। भगवान का माखन का चोरी ये भी दिव्य है। चोर चोरी जो किया भगवान ने वो साधारण नहीं है, ये पवित्र प्रेम का आदान प्रदान है। गोपियां सोच रहे थे ये कृष्ण हमारे घर में कब आएगा और मक्खन खाएगा, तो उनके इच्छा को भगवान पूरा किया और चोरी करके चला गया। और इस लीला को गाते गाते भगवान भगवान ये शब्द के ऊपर परिभाषा देते हुए पराशर मुनि जो हैं कहते हैं कि भगवान का अर्थ होता है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्वी ज्ञान वैराग्यम अस्तिकम सर्वज्ञ इति यम। ये भगवान जो हैं उनके अंदर धन, उनके अंदर रूप, ज्ञान, त्याग, सब यश वैराग्य भरा हुआ रहता है, संपूर्ण यश। और ऐसे भगवान का जो गुणगान करते हैं उनका भी यश हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान का गुणगान किया तो उनका भी यश हो गया। तो भगवान के लीलाओं का, चोरियों का, लीला का गुणगान कर रहे थे, एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर करे उनका भी महिमा बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ का जो केंद्र है भारत का ऑफिस, रास बिहारी जी का दरबार, वहाँ पे जो केंद्र है वो वहाँ पे ड्रामा इत्यादि होता है, नया कलाकारों को, कला क्षेत्र है। उस कला क्षेत्र में एक नया कलाकार आया था, और उन्होंने एक भगवान का चोरी का लीला गाया था, मैया में मैं नहीं माकन खायो, ओ मैया मैंने माकन नहीं खायो, भगवान का यश गा रहा था। गाते गाते उनका यश इतना हो गया कि आज वो उनका भजन बड़ा प्रसिद्ध है। भले वो ऊंचे कोटि का भक्त नहीं है, पर भगवान का यश बढ़ाया तो उनका भी यश बढ़ गया। ऐसे ही एक महान संत है, वो मुसलमान शरीर से जन्म था पर ब्रज के प्रति ऐसा आकर्षण। बहुत सारे भगवान के पद लिखने लगे, भजन लिखने लगे, पर उस समय के जो मुसलमान थे उन्हें खराब लगा, अरे कैसा हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को जाता है। उन्हें फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचाया, बोला कि अभी आपको कवि सम्मेलन में भजन लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर है, काफिर, ये पद आखिरी में होना चाहिए आपका कविता के पद में, आखिरी में क्या होना चाहिए, काफिर है वो जो नहीं बंदे इस्लाम के। तो ये बड़ा धर्म संकट में आ गया, अरे क्या करूं मैं। तो भक्त था, भगवान का तीव्र भक्ति कर रहा था, तेषां सतत युक्तानां भजन्ताम प्रीतिपूर्वं ददामि बुद्धि योगं तं तेन माम उपयान्ति ते, भगवान ने बुद्धि दिया तो उन्होंने लिखा, गेशु लाम देख मेरे घनश्याम के। गेशु का होता है गुंगराले, लाम का अर्थ होता है बाल। गेशु लाम देख मेरे घनश्याम के, फिर काफिर है वो नहीं बंदे इस्लाम के। सब ताली बजाए। ओ मुसलमानों ने सोचा ये कह रहा है काफिर है वो जो नहीं इस्लाम के, पर भक्त क्या कह रहा है, काफिर वो द्रोही है जो नहीं बंदा इस लाम यानी कि इस लंबे गुंगराले केस वाले केस के जो बंदे नहीं है, भगवान के केस के प्रति जो समर्पित नहीं होता है वो काफिर है। काफिर है वो जो नहीं बंदे इस्लाम के। भगवान के सुंदर सुंदर केश है इसलिए उनको केशव कहते हैं, और बहुत प्रसिद्ध हो गया वो हिंदुओं में भी और मुसलमानों में प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान का यश गाते गाते ये भजन, जिन्होंने बड़ा प्रसिद्ध भजन है, महान संत है, तो भगवान के इस लीला को गा रहे हैं, इसमें भगवान का प्रेम छुपा हुआ है। ये गोपियां कहने लगी, अरे हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। ये कहा कि नहीं नहीं, ये आपके वस्त्र कैसे हो सकते हैं, प्रमाण क्या है। बोला हमने नीचे रखा, यहाँ पे फिर कैसे आ गया। तो बोला आपने रखा तो चोर हो तुम। बोला नहीं, ये हमारे ही वस्त्र है। नहीं नहीं, केवल आप ही स्नान नहीं करते हो, आपके अलावा और कोई भी स्नान, बहुत लोग स्नान करते होंगे, देखो हमारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है इसलिए ये वस्त्र हमारे। छोड़ो, झूठ मत बोलो, कल रात को बहुत सारे देवियाँ आए थे और आज रात भी आएंगे पूर्णिमा के रात, तो इसलिए वह एक नया सेट यहाँ छोड़कर गए हैं, उनके रंग बिरंगे कपड़े, और आप झूठ बोलकर कहते हो ये कपड़े आपके हैं। तो बोले इनको गुस्सा है। बोला नहीं नहीं, बोला कि हे कृष्ण जल्दी करो हमें दो, ये बहुत आपस में चलता रहता है। फिर 12वें नंबर श्लोक, 11वें नंबर श्लोक, हम लोग 14वें नंबर श्लोक जिसका तात्पर्य नहीं, वहाँ पे आते हैं। तब वे कहते हैं कि मन्यम बो कृतास्त्वम तु नंद गोपसुतम प्रियम जानी जानी मो अंग ब्रजसाल गम देहि बासाम सी बेपिताम बे। अब कुछ नीति लगा रहे हैं, चार प्रकार का नीति होता है कुछ व्यक्ति को अपने बस में करने के लिए। देखिए भौतिक जगत में नीति लगता है, भक्ति जगत में भक्त राज में प्रीति होता है, तो नीति लगा रहते हैं। चार प्रकार से हम लोगों को बस में, अगर वो ब्राह्मण है तो उसका गुणगान करो, समा दान, क्षत्रिय तो दान दो, और वैश्य है तो वेद करो, ये करोगे तो फायदा, ये करे तो नुकसान। और अगर वो कुछ समझता नहीं तो उसको दंडा से दंड दो। साम दान समाधान दंड वेद दंड। तो गोपियों ने कहा, हे कृष्णा, आप अन्याय मत बनो, हम जानते हैं कि तुम नंद के माननीय बहुत अच्छे पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है, यानी कि बहुत गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे, तुम हमें भी अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रहे हैं। ये गुणगान करे। फिर भी कृष्ण बोला, नहीं देखो ये कपड़े आप लोग एक एक करके लेके जाओ, मुझे भी यहाँ पे देरी हो रही है, कल रात मैं सोया नहीं, नींद आ रहा है, अगर नहीं आओगे तो आपके वस्त्र को, ये कल के तात्पर्य में लिखा था, उसका मैं झूला बनाऊंगा और पेड़ में लगा के वहीं पे सो जाऊंगा। तो गोपियाँ आगे कहते हैं कि श्याम सुंदर ते दासिया, वो कहते हैं श्याम सुंदर हम आपके दासी हैं, यानी कि अभी दान दे रहे हैं, हम आपका सेवा करेंगे, सेवा का दान करेंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। करवाम तबोदितम, आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। देही वासाम सि धर्मज्ञ, आप वासाम, फिर भी कुछ नहीं किए। यहाँ पे वे श्याम सुंदर से कह रहे हैं 15वें नंबर श्लोक में, हम आपके अभी दास हैं, यानी कि दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, हम अपने आप को देंगे, आपका जो भी कहोगे वो हम करेंगे। फिर बोला नहीं, कुछ नहीं कर रहे कृष्ण। तब कहते हैं कि वेद देही वासाम सि धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ हो, अधर्म का कार्य नहीं कर सकते हो, अगर ये अधर्म का कार्य करोगे तो पाप लगेगा और आपका ख्याति चला जाएगा, आपको दुख मिलेगा, और आप ये दे दोगे तो आपका ख्याति बढ़ जाएगा, यानी कि वेद और करने लगे। फिर भी वो कुछ नहीं किया, फिर भी नहीं समझा, तो बोला नो छेद राजे ब्रुवम ब्रुवाम हे, अगर नहीं दोगे तो हम राजा को कंप्लेन करेंगे और राजा आके आपको दंडित करेगा, यानी कि चारों नीति लगा दिया। फिर भी कृष्ण बोले कि नहीं। श्री भगवान वाच भवत्यो यदि मेदास्यो मय उक्तम वा करिष्यति, आप अगर मेरे दास ही हो, अभी परीक्षा करने लगे भगवान, तो जो मैं कहता हूँ वो आपको करना होगा, आपका आप किस प्रकार से दासी हो, मेरे असली दासी हो कि नकली दासी हो, ये पता करना है। अत्र आगत्य स्वभासाम से, एक एक करके आ जाओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। बोला कि हम एक एक करके क्यों आए, झुंड से ले आएंगे और चले जाएंगे। बोला कि नहीं, अगर एक 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 करके आओगे आप अपना वस्त्र चुन लोगे, नहीं तो बाद में कंप्लेन होगा, इसने उसका वस्त्र लिया, इसने मेरा वस्त्र लिया, जैसे भूतकाल में ऐसा कुछ घटना घटी थी, हाँ 9वें स्कंद में उसका वर्णन आता है। तो बोला एक एक करके लेके जाओ, तो अगर आप मेरे दासी हो तो इसका परीक्षा अभी ये होगा कि आपको आना होगा, और आओगे भी कैसे, सुचि स्मिता, हाँ मुस्कुराते हुए आपको आना होगा, और बड़े मुस्कुराते हुए आपको आना होगा और अपने अपने वस्त्र को अब लेके जाना होगा। यदि तुम मेरे कहना नहीं मानोगे इस प्रकार, अगर राजा को कंप्लेन करोगे तो कर दो राजा को कंप्लेन, राजा मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण भी यहाँ पे हट लगाए हैं, पर देखा जाए इस लीला को लेकर बहुत लोग विचलित हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे लंपट जैसे व्यवहार भगवान क्यों कर रहे हैं। पर भगवान भगवान का जो लीला है, जैसे भगवान ने कहा, चाहे उसका जन्म भगवान का हो या कर्म हो, वो दिव्य है। इसको अगर हम सही भाव से ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और परीक्षित महाराज का यही था कि जिस व्यक्ति का मृत्यु 7 दिन में है, उस या मृत्यु निकट है, उसे करना क्या चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ऐसे पवित्र पवित्र कथा सुना रहे हैं जिससे कि परीक्षित महाराज जी का मन एकाग्र होकर कृष्णमय हो जाए। तो ये लीला भी ऐसा ही पवित्र लीला है जिससे परीक्षित महाराज जी का और सारे संतों का मन जो है कृष्ण में और लग जाएगा। तो इस प्रकार के लीलाओं में कोई दोष देखना ही बड़ा दोष है। अगर हम इस लीला में दोष देख रहे हैं, तो इस हमारे अंदर दोष है, उस दोष को पूरा करने के लिए हमें अच्छी तरह से भक्तों का संग करना होगा और अच्छी तरह से जप करना होगा, और ऐसे संगति में पवित्र जब मन हो जाएगा इन लीलाओं का हम आस्वादन कर पाएंगे। कितने पवित्र भगवान हैं, और वो पवित्र भगवान कहते हैं कि ये यथाम माम प्रपदन्ते, भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं, पर ये गोपियां ऐसे भक्त हैं, वो कहा कि कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम बदनाम होने के लिए तैयार हैं, नरक तक जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे भक्त का यहाँ परीक्षा हो रहा है, और ऐसे भक्त का परीक्षा में वे खड़े निकलेंगे, सच्चे निकलेंगे। तो गोपियों के अंदर जो तीव्रता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो सारे धर्मों को त्याग करके भगवान को ही अपना सर्वोच्च मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे पवित्र गोपियों के चरित्र या कृष्ण के चरित्र में दोष देखना नहीं चाहिए, इसे पवित्र भाव से ग्रहण करना चाहिए। एक सुंदर जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, बहुत सुंदर से सब कुछ निचावर करने के लिए ये गोपियां तैयार है। इन गोपियों का जो तीव्रता है, ये शिक्षा में हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे अंदर वो कब वो तीव्रता आएगी कि हम इस प्रकार से कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब कुछ निचावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। ये कृष्ण भक्ति में इतना रस है, कृष्ण के साथ संबंध बनाने में, इस संबंध में इतना सुख है कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार के सब कुछ नीचे छोड़ देना चाहिए, या कुछ भी रकम भरना होगा भरना चाहिए। वो जो लौलिया में तीव्रता है जो गोपियों के अंदर है कृष्ण को प्रसन्न करने का, वो कब हमारे अंदर आएगा? अगर वो आ गया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम भी तीव्रता को प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम, आप सब वैष्णव वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसा कृपा बनाए रखे कि हमारे अंदर वो तीव्रता आ जाए, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं हम सब के अंदर वो तीव्रता आ जाए, ताकि हम सब भक्ति में अग्रसर होके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारे प्रवचन बहुत सरल होता है, इसमें ज्यादा प्रश्न उठता नहीं है। हरे कृष्णा।